कृष्णपदारविन्दयुगलम् यस्मिन् कुरङ्गीदृशाम् वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्त्वतः काश्मीरम् तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकाम् नीलिमा श्रीखण्डम् नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते नवप्रियकमञ्जरी कलितकर्णपूरश्रियम् विनिद्रतरमालतीरचितशेखरेणोज्ज्वलम् दरोत्स्वसितयूथिका ग्रथितबल्गुबैकक्षकम् व्रजे विजयिनम् भजे विपिनदेशतःकेशवम् निन्दन्तम् पुलकोत्करेण विकसन्नीपप्रसूनच्छविम् प्रोढ्वीकृत्य भुजद्वयम् हरिहरीत्यैर्वदन्तम् मुः नृत्यन्तम् द्रुतमश्रुनिर्झरिचयैः कुर्वन्तु मुर्वीतलम् गायद्भिर्निजपार्षदैः परिवृतम् श्रीगौरचन्द्रम् नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यै नमो नमः। श्री परमाराध्य श्री राधा गोविंद देव के श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदन पुरस्कार श्री विद्वत सभा सभाजित शैमुषिक वरेण्य वैष्णवाग्रगण्य सभापति महोदय श्री आचार्य चरण के श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन सहित श्री वांछा कल्पतरु श्री महाराज जी के श्री चरणारविंद में श्री स्वामी जी के श्री चरणारविंद में मेरा बंदन एवं समुपस्थित सभी आचार्य वृंदों को मेरी प्रणति। संपूर्ण वैष्णव समुदाय को प्रणत पूर्वक आज के इस पावन अवसर पर अपनी वाणी को पवित्र करने का ये अवसर कृपा के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, श्री महाराज जी की कृपा के द्वारा। श्री महाराज जी की कृपा, वैष्णवों की कृपा बहुत दुर्लभ है। जहां भावोदय का आचार्यों ने वर्णन किया है, वहां यह कहा है भक्त सामर सिंधु में कि साधनाभिनिवेशों कृष्ण तद्भक्तो तथा प्रसादे नाते धन्यानाम अयम भावो भी जायते अति धन्यानाम। श्री जीवस्वामी पाद अतिधन्य की टीका करते हैं कि जिनको प्राथमिक कृष्ण और कृष्ण भक्तों का दर्शन प्राप्त हो गया है, ऐसे लोग अतिधन्य हैं। वैष्णवों का दर्शन जिनको प्राप्त हो जाए, वे परम परम धन्य हैं। श्री कृष्ण भाव, कृष्ण रति दो प्रकार से उत्पन्न होती है, या तो साधन के अभिनिवेश के द्वारा, रागानुगा साधन के द्वारा या वैधी साधन के द्वारा, दो प्रकार के साधन है प्रसिद्ध, या तो उनके द्वारा, साधन के अभिनिवेश के द्वारा, साधन में अत्यंत आसक्ति के द्वारा प्रीति उत्पन्न, भाव उत्पन्न होता है, या कृष्ण तद्भक्तो तथा प्रसादेन अति प्रसादेन, श्री कृष्ण और कृष्ण भक्तों के अति प्रसाद के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा अति भाग्यशालियों को यह प्रेम की, भाव की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण या कृष्ण भक्तों की कृपा बहुत दुर्लभ है। श्री कृष्ण भक्ति साधनाभिनिवेश के द्वारा अत्यंत दुर्लभ है, परंतु कृष्ण और कृष्ण भक्तों की कृपा के द्वारा भाव की प्राप्ति प्राय की है। यदि कोई यह बल लेकर के चले कि मैं अपने भजन के द्वारा गोविंद को प्राप्त कर लूंगा, अपने भजन के द्वारा मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा या भाव को प्राप्त कर लूंगा, तो यह उसका अभिमान उचित नहीं है। क्योंकि साधन के अभिनिवेश के द्वारा कभी कभी किसी किसी को कृष्ण कृपा की प्राप्ति होगी, वो भी बहुत दुर्लभ कभी कभी प्राप्ति होगी, परंतु कृष्ण और कृष्ण भक्तों की कृपा के द्वारा यह भाव विशेष रूप से जल्दी प्राप्त हो जाता है। साधन का अभिनिवेश भी अपना साधन का अभिनिवेश काम नहीं करता है, उसमें भी कृपा ही कारण करती है। अतः यद्यपि साधन के अभिनिवेश के द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है, परंतु साधन का अभिनिवेश भी बिना कृपा के अकिंचित कर है, अपने आप उदय नहीं होगा। भगवत भक्ति संतों और संतों की, श्री कृष्ण और कृष्ण भक्तों की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होगी। कृष्ण कृपा बड़ी दुर्लभ है, कृष्ण भक्तों की कृपा के द्वारा ही साधन की प्राप्ति होगी। उस साधन के अभिनिवेश के द्वारा प्रायः कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है। सीधे सीधे कृष्ण कृपा के द्वारा भक्ति की प्राप्ति किसी किसी को होती होगी, साधन के द्वारा, कृपा के द्वारा साधन और साधन के द्वारा कृष्ण भक्ति, ये प्रायः होती। केवल कृपा के द्वारा कृष्ण भक्ति किसी किसी को प्राप्त होती है। यदि कोई भाग्यशाली है तो उसको कृष्ण दर्शन हो जाए और उसे तुरंत कृष्ण प्राप्ति हो जाए, साक्षात नहीं होती। अतः संतों की कृपा के माध्यम से जिस साधन की प्राप्ति होती है, वह साधन ही भाव को उत्पन्न कराने में एकमात्र समर्थ और प्रायिक साधन है। उस प्रायिक साधन को, साधन के अभिनिवेश को प्राप्त करने के लिए, यदि सीधे सीधे विषय पे आ जाएं, यदि सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा किसी की महिमा है, तो वह महिमा है श्री रूप गोस्वामी पाद। साधन के अभिनिवेश को प्राप्त कराने में यदि कोई समर्थ है तो वे श्री रूप गोस्वामी पाद ही हैं। क्योंकि बिना श्री रूप के आनुगत्य के यह साधन का अभिनिवेश प्राप्त हो ही नहीं सकता। रागानुग का साधन जिसकी हम बात करना चाहते हैं, जो वैधि साधन से भी अत्यंत उत्कृष्ट होकर के विराजमान है, जिसके उदय का मूल कारण कृष्ण लोभ है, कृष्ण सेवा का जो लोभ, वह जिसके उदय का एकमात्र कारण है, वह लोभ जन्य रागानुग अभिनिवेश यदि प्राप्त होगा, तो वह प्राप्त होगा श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद के कृपा के द्वारा, उनके अनुगत के द्वारा। अतः ये बात साधकों को स्पष्ट रूप से, यह बात साधकों के हृदय में बैठी हुई रहती है कि वे रूपानुगत होकर साधन करते हैं, तब उनको रागानुगा भक्ति की प्राप्ति होती है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्या व्रज लोकानुसारता। साधक रूप में जो सिद्ध रूप, उस सिद्ध रूप के द्वारा मानसी भावना करते हुए श्री कृष्ण की सेवा की जाए। यदि इस बात का थोड़ा सा विवेचन करें तो यहां पर साधक के तीन रूपों का हम दर्शन कर सकते हैं। दो रूप तो है ही वर्णित हैं, एक तो सेवा साधक रूप है और एक सिद्ध रूप है, दो रूप तो वर्णित हैं। परंतु पहला वाला जो साधक रूप है, उस साधक रूप के भी यदि हम दो विभाग कर लें, एक यथावस्थित देह और एक अंतश्चिंतित देह, तो तीन स्वरूप हो जाते हैं, एक सिद्ध स्वरूप, एक अंतश्चिंतित स्वरूप और एक यथावस्थित स्वरूप। यथावस्थित स्वरूप के भीतर जो अंतश्चिंतित स्वरूप है, उसके द्वारा ही कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति होगी। यथावस्थित देह का पूरी तरह से त्याग, यथावस्थित अभिमान का अत्यंत अत्यंत पूरी तरह से त्याग सहज में संभव नहीं है। अतः साधक सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, साधक रूप सहित जो सिद्ध रूप है, उसके द्वारा श्री श्याम सुंदर की सेवा की जाए। अर्थात यथावस्थित देह में जब हम विराजमान हैं, तो मानसी उपासना तो हम श्री रूपमंजरी रथमंजरी प्रभृति के आनुगत्य को ग्रहण करके करेंगे, परंतु जब यथावस्थित देह में विराजमान है, तो यथावस्थित देह के जितने भी क्रियाकलाप हैं, साधकों के लिए जितने भी भक्त अंग हैं, उन भक्त अंगों का त्याग नहीं किया जाएगा। शुद्ध रूप से केवल सिद्ध गणों की ही लीला माधुरी का और उनके ही व्यवहार का यदि अनुकरण करने लग जाए तो नित्य पढ़कर तो सूर्य आराधन करता है, नित्य सूर्य पूजन करने के लिए जाता है। यदि साधक सूर्य पूजन करने के लिए चला जाए, नित्य सूर्य पूजन का अत्यंत आग्रह रखेगा तो वह तो वैधी भक्ति का एक अंग हो जाएगा और उसे इस वृंदावन में फिर श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर उसे उस कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति करने के लिए ऐश्वर्यमय गोलोक धाम में जाना पड़ेगा, शुद्ध रसमय श्रीमद वृंदावन धाम की उसे प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि रेणसा शिष्ट कुर्वन्ति विधमार्गेण सेवते, जो रेणसा करते हुए विधमार्ग के द्वारा सेवन करता है वह महर्षित्वम यात्परे केवल नहीं भावेनो, केवल का तात्पर्य है कासनेनो, संपूर्ण रूप से भक्ति का किसी भी अंग का त्याग किए बिना। यदि भक्ति के अंगों में शंख चक्र का धारण है तो उसको भी ग्रहण करेगा, भक्ति के अंगों में द्वार का धारण है तो उसको भी यदि वो ग्रहण करने लगेगा, यदि भक्ति के अंगों में यदि विभिन्न देवताओं की आराधना यह भी भक्ति का ही एक अंग है तो उनको भी यदि ग्रहण करेगा तो ऐसी स्थिति में कहीं भाग जाएगा उसे, ऐसी स्थिति में इस वृंदावन में यहां पर विराजमान जो कृष्ण लीला, यहां पर विराजमान जो रसमय लीला, उस रसमय लीला की प्राप्ति नहीं होगी। तब उसे या तो महेशित्व की प्राप्ति होगी, द्वारका परकर की प्राप्ति होगी, और यदि वह राधा कृष्ण चरणारविंद की ही आराधना करना चाहता है, यदि वह श्री श्याम सुंदर के श्री कृष्णचंद्र के ही चरणारविंद से प्रीति करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे वृंदावन में रसमय वृंदावन में उसे स्थान की प्राप्ति नहीं होगी। उसे प्राप्त करने के लिए फिर ऐश्वर्य में श्रीमद गोलोक धाम में जाना पड़ेगा। इसलिए यदि सर्वश्रेष्ठ वस्तु रसमय वृंदावन में राधा दासित्व भाव को प्राप्त करके, श्री राधा दासी भाव को प्राप्त करके यदि श्री श्याम सुंदर के माधुरी का आस्वादन प्राप्त करना है, जिस माधुरी के आस्वादन में श्री श्याम सुंदर भी विभाव होकर के विराजमान है, श्री किशोरी जी भी विभाव होकर के विराजमान है और साधक स्वयं उस रस का भोक्ता होकर के विराजमान है, जहां प्रिया प्रियतम प्रिया के द्वारा आश्रय विभाव के द्वारा जैसे आलम्बन विभाव का आस्वादन प्राप्त किया जा रहा है, उस आश्रय जातीय रति का यदि वह आस्वादन प्राप्त करना चाहता है तो उसे फिर रूपानुगत होना ही पड़ेगा। यदि उसने रूपानुगतता का त्याग कर दिया तो उसे कहीं भटकना पड़ेगा, वह अपने ट्रैक से कहीं हट जाएगा, फिर उसकी गाड़ी या तो द्वारका में जाकर के रुकेगी या उसने केवल कृष्णचंद्र की ही आराधना की तो उसकी गाड़ी फिर गोलोक में जाकर के रुकेगी। इस वृंदावन ये जो रजरानी हमारी पूजनीय है, हमको कहीं बाहर नहीं जाना है, हमारे लिए पूजनीय यदि कोई वस्तु है, हमारे लिए यदि कोई साध्य वस्तु है, उपास्य वस्तु है तो वह वस्तु है ये रज, ये वृंदावन। इस वृंदावन का त्याग करके हमको किसी दूसरे गोलोक की चिंता नहीं करनी है, दूसरे गोलोक की ओर हमको नहीं देखना है, तो हमारे उपास्य यहाँ पर जो नित्य नित्य लीला विराजमान है, जो रसमय लीला विराजमान है वह है हमारा उपास्य। यदि उस उपास्य को हमको प्राप्त करना है तो हमको श्री रूपानुगत होने की आवश्यकता पड़ेगी। अतः सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, साधक रूप के भीतर जो सिद्ध रूप है उसके द्वारा हम सेवा करेंगे। जब तक रामदास कृष्णदास रूप हमारा यह साधक देह विद्यमान है, इस साधक देह के भीतर ही अंतश्चिंतित देह की हम भावना करेंगे। श्री रूप कवीश्वर इसमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, रागानुग वृत्ति में जो कहीं बात को स्पष्ट करता है। रूप गोस्वामी जी के बहुत बाद में हुए श्री रूप कवीश्वर, परंतु श्री रूप कवीश्वर ने एक दृष्टांत दिया, वो दिया वैणिक और वीणा का। जैसे वीणा बजाने वाले के हृदय में वही राग होता है, जो राग होता है वही वीणा में बजता है, तंत्री में वह राग बजेगा जो राग कंठ में विराजमान होगा, जो राग हृदय में होगा। और यदि हृदय में राग नहीं है तो वीणा से राग नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह से अंतश्चिंतित देह में जो भाव विद्यमान है उस भाव के द्वारा ही यथावस्थित देह को अपनाते हुए सेवा की जा सकती है। जैसे वीणा और वैणिक दोनों एक देह में अवस्थित होते हुए, एक स्वरूप में अवस्थित होते हुए जैसे सेवा करते हैं, ऐसे ही केवल शुद्ध जो सिद्ध देह है उस सिद्ध देह के द्वारा हम सेवा नहीं कर सकते। केवल हृदय में ही हृदय में राग है और वीणा नहीं है तो राग प्रकट नहीं होगा,
हृदय में जो राग है वह वीणा में भी होना चाहिए, जो वीणा है वही राग हृदय का राग ही वीणा में स्फुरित होगा। इसी प्रकार अंतश्चिंतित देह जो है उस अंतश्चिंतित देह को यथावस्थित देह के साथ में मिलाकर के हमको आराधना करनी है, यथावस्थित देह को छोड़ करके आराधना नहीं करनी है। अतः ब्रज लोकानुसारतः जीव गोस्वामी पाद टीका करते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका करते हैं। ब्रज लोकानुसारता का तात्पर्य है कि सिद्ध देह में हम भावना करेंगे श्री रूप मंजरी रत्नमंजरी की, परंतु साधक देह में हम भावना करेंगे श्री रूप गोस्वामी की। रूप गोस्वामी ने जिस तरह से आचरण किया उस आचरण को अपनाते हुए यदि हम चलेंगे तब तो हमें इस वृंदावन धाम में रस की प्राप्ति होगी, अन्यथा इस वृंदावन धाम में रस की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती है। हमारी हम कहीं ट्रैक से उतर जाएंगे, हमारी गाड़ी या तो द्वारका पहुंच जाएगी या हमारी गाड़ी गोलोक पहुंच जाएगी जहां ऐश्वर्य विराजमान। अतः साधक के तीन स्वरूप हो जाते हैं, एक स्वरूप है यथावस्थित देह, उस यथावस्थित देह में वह श्री रूप गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करते हुए गुरुपाद आश्रय करेगा, वैष्णव बंदन करेगा, वह तुलसी पूजन करेगा, वह एकादशी व्रत करेगा। तो एकादशी व्रत, तुलसी पूजन, गुरुपाद आश्रय ये यथावस्थित देह में तो है, भक्त देह में तो है, परंतु नित्य परकर में नहीं है। सिद्ध देह में ये वस्तुएं नहीं है। सिद्ध देह में कोई भी एकादशी व्रत, हमारे ब्रज में नंद बाबा और यशोदा जी दो एकादशी करते हैं, सबरे ब्रजवासी तो आनंद पूर्वक एकादशी के दिन सब कुछ खाते हैं। एकादशी के दिन हमारे ब्रज में कोई व्रत करने के लिए थोड़ी बैठता है। तो सिद्ध स्वरूप में एकादशी व्रत नहीं है, परंतु यदि सिद्ध स्वरूप को ही केवल अपना करके चला जाए और एकादशी व्रत का त्याग कर दिया जाए तो महानर्थ हो जाए, भक्त का जो मुख्य अंग है वह मुख्य अंग ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, साधक रूप के भीतर जो विराजमान सिद्ध रूप है, साधक रूप का त्याग करके नहीं, साधक रूप के भीतर विराजमान जो सिद्ध रूप है उस सिद्ध रूप के द्वारा ही सेवा की जाएगी। अर्थात अंतश्चिंतित देह में मानसी में तो एक साधक अपने आप की मंजरी रूप में आराधना करेगा, परंतु यथावस्थित देह में वह अपना अभिमान कृष्णदास रामदास इत्यादि ही रखेगा और जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद जैसा आचरण करते रहे वैसा ही आचरण वह यथावस्थित देह में करेगा। अतः श्री रूप पादाश्रय ग्रहण करना यह भक्ति मार्ग का मूलभूत एक आधारभूत वस्तु है, जिसका त्याग करके हम कभी भी श्री कृष्ण चरणारविंद को जिसका त्याग करके प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, आदमी बहक जाएगा। यदि उसने उसका त्याग किया तो या तो वह स्वयं नायकाभिमान को धारण करके बैठ जाएगा या वह कहीं सखी भाव को धारण करके विराजमान हो जाएगा। मंजरी भाव में जो रस का उत्कर्ष है, क्योंकि मंजरियों को सखियों का जो आस्वादन है उसकी भी प्राप्ति है, मंजरियों को जो श्री किशोरी जी का आस्वादन है उसकी भी प्राप्ति है, और मंजरियों को श्री श्याम सुंदर का किशोरी जी के प्रति जो प्रीति है उसकी भी प्राप्ति है। तो यदि उसे चौहरा आस्वादन प्राप्त करना है, अपना भी आस्वादन, मंजरियों का भी आस्वादन, सखियों का भी आस्वादन और युथेश्वरी का भी आस्वादन, तो युथेश्वरी, सखी, मंजरी और स्वयं इन चारों आस्वादनों के साथ यदि श्री श्याम सुंदर का आस्वादन प्राप्त करना है तो हमको एकमात्र श्री रूप गोस्वामी पाद का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। रूप गोस्वामी ने यथावस्थित स्वरूप में विराजमान होकर के जिस तरह से आचरण किया उसको अपनाना पड़ेगा। श्री रूप की अपूर्व जो महिमा, उस महिमा को यदि गायन किया जाए तो कोई उसका पार नहीं है, जहां तक गायन किया जाए। हाँ, समय समाप्त कर आदेश हुआ है, मैं इस बात को यही समेकित करने का प्रयत्न करूंगा। केवल श्री रूप गोस्वामी के जो कृपामय स्वरूप है उसकी दो चार मोटी मोटी बातों को रेखांकित मात्र करूंगा। श्री रूप गोस्वामी पाद का जो अपूर्व स्वरूप है, अपूर्व जो अवदान है, वह अवदान केवल साधकों को एक मानदंड, एक मानक उपस्थित करने वाला ही स्वरूप उनका नहीं है। यदि लौकिक दृष्टि से भी यदि उनको देखा जाए तो एक ओर वे आचार्य हैं, जहां रूपानुगत भजन होगा यह तो मुख्य बात है ही, परंतु इसके साथ साथ गौण बातों को यदि अपनाया जाए तो गौण बातों में श्री रूप गोस्वामी पाद स्वयं एक आचार्य हैं। हमारे महाप्रभु आचार्य नहीं है, महाप्रभु साक्षात उपास है, परंतु श्री रूप गोस्वामी पाद आचार्य होकर के विराजमान है। काव्य शास्त्र की उस महती परंपरा में श्री रूप गोस्वामी पाद ने संपूर्ण काव्य शास्त्र की उस परंपरा को जैसे भक्ति में संगमित किया, वह अपने आप में एक अपूर्व है।
सारे रसों को निराश करते हुए जितने भी लोक में जिनको रस कहा जाता है उनकी रस रूपता का खंडन करते हुए, उनको केवल उपचारे रस बताते हुए, उन सबका निराश करते हुए श्री भक्त स्वामी सुंदर उज्जवल निर्मणि जैसे महाग्रंथों में, श्री नाटक चंद्रिका जैसे लक्षण ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने आचार्य स्वरूप को स्थापित किया। श्री रूप गोस्वामी के व्यक्तित्व को यदि देखें, व्यक्तित्व यहां पर मैं व्यक्ति रूप में नहीं कह रहा हूं, उनका जो दिव्य व्यक्तित्व है उस तो दिव्य व्यक्तित्व का अर्थ में व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उनके यदि उस दिव्य व्यक्तित्व को का दर्शन किया जाए तो एक ओर वे आचार्य हैं, दूसरी ओर वे स्वयं रस की रीति कैसे होनी चाहिए, साधक के साधन कैसे करना चाहिए, इस साधन को करके दिखाने वाले स्वयं एक साधक के रूप में यथावस्थित स्वरूप में विराजमान है। नृत्य परकर पंत यथावस्थित स्वरूप में एक साधक स्वरूप से विराजमान है। तीसरी ओर वे एक अतिश्रेष्ठ कवि हैं, केवल काव्य की दृष्टि से छोड़ दीजिए उनके सिद्धांत पक्ष को, छोड़ दीजिए उनके आचार्य पक्ष को, भक्ति सिद्धांत पक्ष का एक तरफ है, काव्य शास्त्र का आचार्य पक्ष एक तरफ है, उसको ये छोड़ दें हम, यदि उनका स्वयं का जो साधक पक्ष है उस साधक पक्ष को हम छोड़ दें और उनका जो सिद्ध स्वरूप है रूप मंजरी स्वरूप, उस रूप मंजरी स्वरूप को भी छोड़ दें, यदि चारों स्वरूप को छोड़ करके एक पांचवें स्वरूप को ही ले लिया जाए, केवल उनके काव्य को ही ले लिया जाए, तब भी कोई उनके काव्य की तुलना कर नहीं सकता। कालिदास प्रभृति जिनके नाम इतने गाए गए हैं, जिन्होंने रूप साहित्य का आस्वादन नहीं किया, वे ही उनके नाम गाते हुए इतने रीते हैं। श्री रूप गोस्वामी में जो काव्य के विभिन्न पक्ष, उस काव्य की वह भावुकता, काव्य की वह कल्पनाशीलता, काव्य में विराजमान वह विचार शक्ति, काव्य में विराजमान वह कलात्मकता, काव्य में विराजमान अभिव्यक्ति की वह कुशलता, वह विदग्धता, जैसी श्री रूप गोस्वामी पाद में विराजमान है ऐसी कहीं दूसरी जगह प्राप्त हो नहीं सकती। भावुकता और काव्य सबकी पराकाष्ठा। श्री गोविंद वृंदावली में जिस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद चित्र काव्य का प्रयोग करते हैं, उसको देखकर के बड़े बड़े कला प्रिय आश्चर्यचकित रह जाते हैं। श्री गौड़ हरि के हृदय के भाव को तो जानने वाला यदि कोई है तो वह श्री चैतन्य मनोभीष्ट को यह कोई जानने वाला है, उनके हृदय के भाव को यह कोई जानने वाला है। चैतन्य चरितामृत के अनेक अनेक पक्ष हैं, अनेक अनेक प्रसंग इसमें उड़े ले जा सकते हैं इस प्रसंग को प्रमाणित करने के लिए। श्री गौड़ हरि के अपूर्व भाव को जैसे उन्होंने प्रकट किया ऐसे कोई दूसरा प्रकट नहीं कर सकता है। श्री हरि ही मानो आज हरण करने वाले और हरण करने वाले होकर के श्री गौ श्री जीव गोस्वामी के रूप में, श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में, इन षड आचार्यों के रूप में विराजमान हैं। जहां तक वर्णन किया जाए बहुत बहुत है, उनके काव्य पक्ष को ले लें, उनके कविता पक्ष को ले लें, उनके आचार्य पक्ष को ले लें, उनके साहित्य आचार्य पक्ष को ले लें, काव्य शास्त्रीय पक्ष को ले लें, उनके उपासना पक्ष को ले लें, उनके स्वयं संगठन पक्ष को ले लें, ये संगठन पक्ष भी कोई कम नहीं है। जैसे उन्होंने अपने उस युग में सबको एक साथ लेकर के श्री रूप गोस्वामी पास जैसे चले, किसी भी पक्ष को ले लें श्री रूप गोस्वामी अपूर्व हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है। जो कुछ भी कहा जाए वह अत्यंत अत्यंत स्वल्प होगा। अतः आचार्य निरूपण करते हैं कि भक्ति के, भगवत भक्ति के जितने अंग हैं वे सारे के सारे अंग वैष्णव भक्ति के भी हैं। भगवत स्वामी सिंधु के जहां 64 अंग गिनाए वहां पर आचार्य निरूपण करते हैं कि कृष्ण भक्ति के जितने अंग प्राय उतने ही अंग वैष्णव भक्ति के भी हैं, गुरु भक्ति के भी उतने ही अंग हैं। तो जहां पर श्री रूप गोस्वामी ऐसे गुणनिधि होकर के विराजमान, उनकी एक कृपा कणिका यदि प्राप्त हो जाए तो साधक को उस अभीष्ट को प्राप्त करने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। उनकी कृपा आज उनके इस प्रधान अवसर पर, इस परम पावन इस अवसर पर उनकी कृपा का अति श्रद्धा पूर्वक स्मरण, श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ और निश्चय, निश्चय नहीं विश्वास नहीं, सुदृढ़ विश्वास, सुदृढ़ विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास नहीं, सुदृढ़ सुदृढ़ नहीं निश्चय विश्वास, तीन तीन डिग्री लगा दी, विश्वास दृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वास निश्चय सुदृढ़ विश्वास। तो जहां पर इतनी डिग्रीज लगी हुई हैं उन श्री रूप गोस्वामी के श्री चरणार उनकी जितनी वंदना की जाए उनकी कृपा को हम प्राप्त करने के लिए जहां पर विराजमान है उनकी कृपा इन दीनहीन के ऊपर अवश्य होगी, हम निरपराध होकर के बस उनके चरणारविंद में एक बार प्रणति करें उनके श्री चरणारविंद में।
चिरकाल से बहुत अनुग्रह है अनुराग है लेकिन इन दिनों में थोड़े अपने स्वास्थ्य की वजह से विवश हूं इसलिए अब अधिक नहीं जाता कहीं, परंतु इनका आदेश पहुंचने पर इनके दर्शनकार वैष्णव जनों के दर्शनकार उपस्थित होकर के भगवत चर्चा का लोभ संवरण नहीं कर सका, अतः उपस्थित हूँ शरीर की व्यवस्था से। मैं अपने ज्येष्ठाचार्य प्रवर्य को अभ्युत्थान भी नहीं दे सका क्योंकि मुझे थोड़ी उठने में असुविधा है। बाकी उसके प्रायश्चित में मैं कुछ क्षण बोलने के बाद ये सभापति का आसन उनको समर्पित है। जहाँ तक रागात्मिका रागानुगा और फिर आगे चलकर के किशोरी जी का मादनाक्ष मोदनाक्ष, ये सब भट्टी जी ने एक अपूर्व, क्योंकि प्रोफेसर हैं, इस स्वाध्यायशील अनुशीलन शील महानुभाव हैं, परंपरा सिद्ध पुरुष हैं, ऋतंभरामति संयुक्त हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि अभी तरुण हैं, सशक्त हैं, क्योंकि अन्यावेशों को संवरण करना सहज है लेकिन भगवत चर्चा विषयक जब अंत में कोई भावावेश होता है, जब स्फूर्जित और स्फुरित होकर के किसी उन्मेष में प्रवृत्ति होती है, उस समय के आवेश को संवरण करना सशक्त पुरुषों के लिए ही है, सुकुमारों के लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं किसी विषय के अंतर्मर्म में प्रवेश इस समय करने का साहस नहीं करता, क्योंकि वह समय साध्य भी है और उसके लिए अपेक्षित शक्ति भी सापेक्ष है। परंतु इन्हीं के सब शब्दों का अनुमोदन और हृदय से उसका समास्वादन करते हुए उसके प्रति उपकृति मात्र व्यक्त करता हूँ कि सद्गोस्वामी पादों में जिसका जो अवलंब है, आश्रय है, वैसे सभी आश्रय हैं, कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार से न्यूनाधिक्ष नहीं है। परंतु श्री महाप्रभु ने चरितामृत में अपने श्रीमुख से एकमात्र श्री सनातन गोस्वामी को जगत गुरु, और चैतन्य चरितामृत के अंत खंड में जहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथाचार्य, श्री हरिदास जी, अन्य अन्य समस्त महानुभाव उपस्थित थे, उनके मध्य में श्री रूप गोस्वामी के श्लोक किया और कराया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कितने ही अभी नाम लिया नाट्य चंद्रिका का, सूत्रधार उपसूत्रधार और अन्य अन्य गंभीर विषयों का चर्चा करके श्री रूप गोस्वामी के स्वरचित श्लोकावली का जो उन्मेष और उसके उसका जो आस्वादन स्वयं गौर हरि ने किया और जो बात कही कि मेरे हृदय की बात रूप समझते हैं, ये बहुत गंभीर बात है। बहुत बड़े काव्य कृत थोड़ा बहुत मैं भी आड़ा टेढ़ा लिख लेता हूँ, परंतु अपने हृदय की अभिव्यंजना तो सरल है लेकिन किसी अति भावुक रसिक, वो चाहे आश्रय विभागीय हो, चाहे आलम्बन विभागीय हो, संपुष्ट उद्दीपन भी हो और उससे परिपुष्ट परिपक्व सांगोपांग रस वैशिष्ट्य की परमानुभूति की अभिव्यंजना में काव्य विषयक संपूर्ण ओज प्रसाद गुण संपन्न सामर्थ्य भी हो, सरस्वती यद वदनेषु नित्यम आभाति वीणामेव वादयन्ती, सारे का सारा अंत प्रकाश हो, महत्कृपा भूति परिवर्षित हुई हो, तो उस समय लेकिन साधारण नायक का नायिका के अंतर्भाव को स्पष्टतः स्फुटित करना बड़े बड़े शिल्पियों के लिए, काव्यजीवियों के लिए भी संभव नहीं है, जबकि श्री राधा गोविंद के अभिन्नतम हम रस विशिष्ट पर ब्रह्म श्रीमन महाप्रभु के अंतर्निविष्ट विशिष्ट रस की परम दिव्याति दिव्य कांति को स्वांतकरण में अनुभव करके उनको भी चमत्कृत करने वाली व्यंजना प्रदान करना, ये श्री रूप गोस्वामी चरण को छोड़ करके विश्व के किसी कवि की सामर्थ्य नहीं है। ये एक अलौकिक अति दिव्य और तुलना उपमा करना ठीक नहीं है, क्योंकि भट्ट जी जानते हैं परमार्थ में केवल अनन्वय अलंकार ही स्वीकृत है। किसी की उपमा करना, तुलना करना, किसी को छोटा बड़ा कहना, सालग्राम की सब बटियां बड़ी छोटी हैं, लेकिन तथापि जहां तक एक संपूर्ण व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ एक परिपुष्ट सार्वदैशिक सार्वभौम सर्वयुग के अनुरूप यदि कोई अतिशय व्यक्तित्व कहीं उद्भूत हुआ है, तो इसमें मुझे शत-शत नमन करके महाराष्ट्र पूर्वक निवेदन करना पड़ेगा कि रूप गोस्वामी की तुलना ब्रह्मांड में दूसरी जगह नहीं है। कहां उनका एक एक किसी भी विषय को ले लीजिए और जिनमें स्वयं प्रकट होकर के स्वयं द्वारिका में श्री किशोरी जी की अंशभूता सत्यभामा जी स्वयं प्रकट होकर के जिनको अपना नाटक पृथक रूप में रचित करने का रूप गोस्वामी से आग्रह करती हैं और अनुग्रह भी करती हैं, ललित माधव में भक्ति और दिव्य विदग्ध माधव में, और यहाँ पर अलौकिक अलौकिक नाम की महिमा, धाम की महिमा, लीला की कथा की महिमा, महाराज कहाँ किशोर श्री संपूर्ण वेद वेदांत समस्त दिव्याचार्य प्रवर्या सर्वे वदंती कि श्री कृष्ण से अद्वैतवाद के आचार्य भी कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, यहाँ भगवत पर रस का ईश्वर साक्षात कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराजि गोविंद सर्व कारण कारणम उस्तुरीय पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से भी आगे जो अलौकिक अनिर्वचनीय केवल समाधि से भी गोचरी भूत न हो करके केवल इन परम कैंकर्य भाव में किंकरी भाव में रहने वाले वैष्णव जनों के ही अंतर मर्म में स्फुरित कृपा से स्फुरित होने वाला जो अति रहस्यमय जो श्री राधा परतत्व है, उसकी जो अभिव्यंजना का परमाश्रय है, उस गोस्वामी को छोड़ करके ब्रह्मांड में किसके आश्रय से उत्पन्न हो सकती है और आस्वादन हो सकता है, चाहे विद्ध माधव में, चाहे उज्ज्वल नीलमणि में, और चाहे भक्ति साम्र सिंधु में, आगे चल करके चंपुओं में भी, और श्री महाप्रभु का अंगुष्ट चोषण करके अभिव्यंजित करने वाली दार्शनिक भूमिका में कवि कर्णपूर, यहाँ वेदांत के पटल के ऊपर रस की मंदाकिनी ऐसी प्रवाहित की है कि वैष्णवों के हृदय की उर्वरा भूमि में विकसित होने वाली संपूर्ण भाव मंदार राशि अपूर्व आनंद मकरंद विकीर्ण करती हुई और अध्यात्म के संपूर्ण प्रांगण को सौरभित करती हुई प्रादुर्भूत हुई है। उस कविकर्ण पूर्व स्वामी के उस दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की वो भी महाप्रभु की कृपा है, वह भी अति मौलिक है, अलौकिक है, अनिर्वचनीय है, लेकिन संपुटित होकर के और संस्फुरित होकर के जिस सांगो पांग विधा में आचार्यों को रसगंगाधरकार भी और कालिदास भवभूति और माघ भी यदि कहीं आकाश में बैठे हुए सुनते होंगे तो अपने काव्य की वृंदों के ऊपर रूप गोस्वामी के काव्य मंदारों के विकास से चमत्कृत हो गए होंगे। उनकी उनकी प्रतिभाओं ने भी अवश्य ब्रज की गोपी से, अगर वो आज होते तो रूप गोस्वामी के पनघट से अपनी प्रतिभा का अवश्य वे घट भरा होता, पर विघन नहीं होता ऐसा अलौकिक। और लेकिन मैं स्वयं ही क्योंकि यहाँ तो श्रद्धावनत होकर के श्रद्धांजलि मात्र ही समर्पित करने का संदर्भ है, अवकाश है, तरंग तो आती है, मन तो उमंगित होता है, लेकिन उनका संवरण करना भी वैष्णव का शील है। इसलिए समय के अनुबंध में श्री रूप गोस्वामी पाद जहाँ कोई कहे कि कोई नाम की महिमा कहो तो क्या कह सकता है इस श्लोक से आगे, तुंडी तांडवनी रतिम बितनुते तुंडावली लवधये कर्ण क्रोड कडम मनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य प्रियां चेतः प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता कियद्भिर्मृत ही कृष्णे इति वर्णद्वयी। इससे आगे कहां हजारों श्लोक पढ़ते हैं जगह जगह पर, लेकिन सब श्लोकों का, सब महिमाओं का, सब माधुर्य महावारधियों का सेतु बंधन इसी श्लोक के परमाश्रय में समापित करना पड़ता है, अभिव्यक्त करना पड़ता है। कहाँ है नांदी मुखी से पूर्णमासी जी श्री किशोरी जी के दिव्य और एक एक बात अब यहाँ उठाने में तो बहुत समय लग जाएगा, कुछ बोलने का मन तो कर रहा है लेकिन अपने मन को दबा करके आचार्यों को ही बोलने की सुविधा और अवकाश प्राप्त हो और हम अपने कर्ण कोहरों को कृतार्थ और चरितार्थ करें, इसी भावना से मैं श्री गोस्वामी पाद के चरणों में और समस्त आज उनके उनको प्रणाम करने वाले एकत्रित संवेत हुए वैष्णवों के चरणों में शत शत नमन करके मैं विश्राम दे।
एवं नाटक शैली का अद्भुत वर्णन सुना। स्वास्थ्य खराब होने के कारण परिस्थितिवश उनको यहाँ से शीघ्र जाना पड़ा। वास्तव में किसी सभा का अध्यक्ष का आसन खाली नहीं रहता है, तो जैसे जैसे वो मुझे आदेश दे गए मैं अपने मध्य इस मंच पर विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री गौरकृष्ण जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मंच के अध्यक्षता का आसन ग्रहण करें। तब तो माधव एक ललित माधव तो उनमें इस कृष्ण लीला का वर्णन के लिए महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि इसकी पृथक से रचना करें, एवं द्वारका लीला के लिए सत्यभामा जी ने आदेश दिया कि वह उसकी पृथक से रचना करें। पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी जी ने उन्हीं के आदेशानुसार उनकी पृथक पृथक रचना की। उसी के संदर्भ में आज मुझे एक बात स्मरण आई कि रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकट विग्रह श्री राधा गोविंद हैं। जो विग्रह गोविंद देव जी की वृंदावन में प्रकट हुई उन्होंने वृंदावन में ही उसी की स्थापना की, तो ये तो गोविंद की ब्रज लीला हो गई। किंतु द्वारका की जगह वो गोविंद चले गए जयपुर में, द्वारका तो नहीं गए किंतु वही गोविंद जयपुर में चले गए जहां पर कि वो द्वारकाधीश की ही लीला कर रहे हैं। अब अपने मध्य इस मंच पर आसीन जिन्होंने कि अनेक गौड़िया ग्रंथों की का अनुवाद किया है हिंदी में, एवं अनेक गौड़िया ग्रंथों का आपके द्वारा प्रकाशन किया गया, ऐसे अपने मध्य इस मंच पर आसीन विद्वान मनीषी लेखक श्री श्यामलाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह यहां पर उपस्थित भक्तों को आज मार्गदर्शन दें।
सहगण ललिता श्री विशाखान्वित वांछा कल्पतरु वहश्च कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो परमाभिवंदनीय श्री गोस्वामी चरण सभापति महोदय, परम पूजनीय श्री स्वामी जी, श्री विद्वत समाज आचार्य वृंद, समुपस्थित चैतन्य प्रेम पीयूष पान करने वाले भक्त वृंद, माताओं, अति वर्ष का विषय है कि आज हम श्रीमन महाप्रभु के परमन्यतम नित्य पार्षद श्री रूप गोस्वामी पाद की स्मृति में अपनी वाणी को सार्थक करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। और सच पूछिए कोई मैं प्रवक्ता नहीं हूं, आचार्य पाद की स्वामी पाद का आदेश था इसलिए मैं तो यहां सुनने के लिए ही कुछ आया था। आपने पूर्व वक्ताओं से श्री रूप गोस्वामी के अति गंभीर विषय को, उनकी सार गर्भित उनके व्यक्तित्व को, उनकी साधना को अथवा उनके व्यक्तित्व के प्रकार का भी बड़ा पुंखानुपुंख श्रवण किया है। मुझे तो बस इतना कहना है श्रद्धांजलि के रूप में, श्रीमन महाप्रभु एकमात्र अवतीर्ण हुए, अनर्पित चरीन चराच करुणयावतीर्णा करौ, समर्पय तुम उन्नतो उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रयम्। बाह्य अवतार का कारण अथवा जीव जगत के निमित्त यही एक मुख्य कारण, अब उसको आपने इस अभीष्ट को इस जीव जगत के उद्धार के लिए उस उज्ज्वलतम निज भक्ति रत्न को, संपत्ति को मैं समझता हूं बांटने के लिए श्रीपाद रूप गोस्वामी को ही चुना। जहां साधक और साधन, साध्य और अनेक बात की चर्चा हो चुकी है, हम देखते हैं कि श्री रूप गोस्वामी महत्पुरुषों के दर्शन अति दुर्लभ, महत कृपा भी बड़ी दुर्लभ, साधन भी बड़ा दुर्लभ है। राम केली में जाते ही प्रथम दर्शन